आज श्री बलराम जयंती का शुभ दिन है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव हम सब के लिए है, क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान हैं। उनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम ये एक ऐसी जोड़ी है जो कभी अलग नहीं की जा सकती। बलराम वैसे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। गोलोक वृंदावन जो कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, वहां पर बलराम जी नित्य रूप में कृष्ण के बड़े भाई हैं। लेकिन फिर भी हालांकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई होने के बावजूद और स्वयं भगवान होने के बावजूद बलराम कृष्ण को हमेशा अपना प्रभु ही मानते हैं, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सेवक मानते हैं। तो वह स्वयं भगवान बलराम जी इस तरह की भावना रखते हैं तो फिर हम सब साधारण जीवों की बात तो क्या है। इसलिए बलराम आदि गुरु कहलाते हैं, गुरु तत्व। गुरु व्यक्ति तो होते हैं अवश्य, लेकिन ये एक तत्व है। गुरु तत्व ये मतलब वो सिद्धांत जिनका आश्रय लेने से हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शक्ति, ये ज्ञान, ये मार्गदर्शन बलराम से आता है, इसलिए बलराम को आदि गुरु कहते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए वो गुरु कहलाते हैं, अलग अलग तरह के, वो सब बलराम के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बलराम की कृपा से, उनकी शक्ति मात्र से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण और बलराम के बीच में अंतर इतना ही है कि कृष्ण सांवले हैं और बलराम गोरे हैं, सफेद रंग के हैं। अंतर इतना ही है, शक्ति में दोनों एक समान हैं। वैसे भगवान कृष्ण केवल अपने धाम में रहकर अनंत लीलाएं करते हैं, बड़े मधुर मधुर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में। लेकिन अन्य जो सारे कार्य हैं, जैसे सृष्टि की रचना करना वगैरह, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने आप नहीं करते हैं। जिस तरह से एक कारखाने का मालिक जो होता है, वो कारखाने का हर एक कार्य अपने आप नहीं करता, उसके तरह तरह के दूत होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो इन कार्यों को करते हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने अलग अवतारों को ये काम सौंप देते हैं, और भगवान कृष्ण केवल गोलोक वृंदावन में रह के अपने भक्तों के साथ में मधुर लीलाएं करते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण की ओर से बहुत जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना वही करते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि इस भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और हमारा जो ब्रह्मांड है हमारे लिए इतना बड़ा लग रहा है, परंतु अन्य ब्रह्मांडों की तुलना से ये तो बहुत ही छोटा ब्रह्मांड है, खास तो बड़ा नहीं है। और इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वजन बलराम जी अपने विस्तार या अपने अवतार शेष नाग के द्वारा करते हैं। अपने फणों पे अनंत शेष इन सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। हमें भी ब्रह्मांड बहुत भारी लग सकता है, लेकिन अनंत देव के लिए, शेष नाग के लिए, ये एक ब्रह्मांड एक रूई के बीज के बराबर लगता है। आप अगर रूई का बीज जो है हाथ में लेंगे तो कितना भारी लगता है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि बलराम जी की वजह से उन सारे ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति शेषनाग को मिलती है जो कि उनके अवतार हैं। और केवल भौतिक जगत नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड के परे एक आध्यात्मिक जगत है जहां कभी भी किसी भी चीज का नाश नहीं होता है। ये ब्रह्मांड में सब कुछ नश्वर है, लेकिन भगवान के उस धाम में जिसको वैकुंठ जगत कहते हैं, वहां पे हर एक वस्तु शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। तो बलराम जी भी उस सृष्टि के आध्यात्मिक सृष्टि को संभालने वाले हैं, बल्कि उन्हीं से आध्यात्मिक सृष्टि निकलती है। और इस आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने विभिन्न अवतारों में सुंदर लीलाएं करते हैं। तो देखिए बलराम जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। और वही बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ हमेशा प्रकट होते हैं जब भी श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांडों में अवतीर्ण होते हैं। तो जैसे कि कोई बड़े राजा होते हैं या बड़े कोई राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, साथ साथ में उनके पार्षद वगैरह जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांडों में अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ में उनके धाम के उनके भक्त वो साथ में आते हैं। और उनमें से बलराम जी पहले नंबर के हैं। बलराम जी अवश्य रहते हैं, चाहे बलराम के रूप में, त्रेता युग में जब श्री कृष्ण राम के रूप में आए तो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए, कलयुग में 500 साल पूर्व जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इस तरह से बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण के साथ में उनके धाम में भी रहते हैं, और जब श्री कृष्ण भौतिक ब्रह्मांड में अवतीर्ण होना चाहते हैं उनकी लीला प्रकट करने के लिए, इन ब्रह्मांडों के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, तो उस समय बलराम जी भी अवश्य प्रकट होते हैं। तो आज बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस क्यों कहते हैं? जन्म दिवस तो हम साधारण मनुष्यों के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान का वैसे जन्म नहीं होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म चले दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि अर्जुन, जो तत्वतः जान लेता है कि मेरे कर्म और मेरा जन्म ये दिव्य है, ये लौकिक नहीं है, और जो श्रद्धा पूर्वक इस बात को जान लेता है, उसे यहां भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वरन वो मुझे प्राप्त करता है, अर्थात मेरे धाम में जाता है। इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर वो शाश्वत भगवत धाम की प्राप्ति करता है और हमेशा के लिए भगवान के निजी सानिध्य को प्राप्त करता है। इसलिए बलराम और कृष्ण में अंतर नहीं होने की वजह से हमें जानना चाहिए कि जैसे कृष्ण का प्राकट्य होता है, ठीक उसी तरह से बलराम जी का प्राकट्य भी होता है। हम सब साधारण जीव, हम जन्म लेते हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, लेकिन भगवान पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हम हमारे माता पिता को चुन नहीं सकते कि अगले जन्म में हमारे माता पिता कौन होने चाहिए। अगर ऐसा होता तो सभी लोग टाटा बिरला के परिवार में जन्म लेने के लिए कोई अपना चयन करते, या किसी फिल्म स्टार के घर में जन्म लेने के लिए कोई चयन करते, लेकिन ऐसे नहीं है। प्रकृति के कानून के अनुसार हमें पुनर्जन्म मिलने वाला है। जैसे हमने कर्म किए वैसे हमें अगला जन्म मिलने वाला है, परंतु बलराम के लिए ऐसा नहीं है। बलराम अपने माता पिता को चुन सकते हैं। जिस तरह से जब कोई नाटक का दल होता है और वो लोग जगह जगह जाकर वो भी नाटक प्रस्तुत करते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि हालांकि नाटक तो यही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा इधर उधर फर्क कर लेते हैं, लेकिन जो मूल पात्र होते हैं वो वही होते हैं। तो राजा जो होगा वो हमेशा राजा का रोल ही करता है, वो जो व्यक्ति जो अभिनेता होता है, फिर उसको
उसका सिपाही होता है वो हमेशा वो सिपाही का रोल ही करते रहता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण या बलराम जब इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं तो उनके माता कौन होंगे, उनके पिता कौन होंगे, ये निश्चित होता है, फिक्स। ये सुंदर नाटक है, सुंदर लीला है जो भगवान रचाते हैं यहां आकर। तो उनकी माता का नाम है रोहिणी देवी, परंतु बलराम जी का प्राकट इतना साधारण नहीं है क्योंकि उनकी दो माताएं हो गई। अब किसी एक व्यक्ति की दो माताएं कैसे हो सकती हैं? हम कह सकते हैं दूसरे ने पाला पोसा इसलिए माता हो गई, लेकिन नहीं। बलराम जी के बारे में कहा जा सकता है कि वो दो मां के गर्भ में थे। अब ये कैसे हो सकता है? यही तो इतिहास है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। आप सबने कृष्ण कथा तो सुनी है कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ। उनके जो माता पिता निश्चित हैं, फिक्स हैं, वसुदेव और देवकी। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से, देवकी के भाई कंस ने सारी व्यवस्था की और जब उनको वापस ले जा रहे थे तो आकाशवाणी आई और कंस को पता चला कि देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण होने वाला है। और आप सब जानते हैं कि कंस ने फिर क्या किया, देवकी और वसुदेव को बंद करा दिया। लेकिन किसी न किसी तरह से वसुदेव ने बड़े चतुराई से, अकलमंदी से काम ली। कंस कह दिया कि जितने भी मेरे बेटे होंगे, बच्चे होंगे, मैं आपके हवाले कर दूंगा, अभी देवकी की हत्या करने से क्या लाभ होगा। और जब पहला बच्चा हुआ कीर्तिमान, तो वसुदेव ने जाकर कीर्तिमान को कंस के हवाले कर दिया। कंस का हृदय पिघल गया, वो विश्वास नहीं कर सका कि ये वसुदेव ऐसे व्यक्ति है जो अपने शब्द को इतना वजन देता है। एक बार उसने वचन दिया और कभी तोड़ेगा नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुत्र को जाकर मृत्यु के हवाले कर सकता है। फिर कंस ने कहा ठीक है, मैं आपको बंद नहीं करूंगा, आपको छोड़ दूंगा। आखिर मेरा जीवन का डर जो है वो आठवें पुत्र से है, पहले से नहीं। तो ये सुनकर एक व्यक्ति थोड़े चिंतित हो गए, वो कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि ने सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, सारा स्क्रिप्ट ही बदल दिया, नाटक में जो लिखा होने वाला था ये होने के बजाय कुछ और ही लग रहा है, कुछ हो रहा है। अगर कंस अभी असुर से सुर बन गया, अगर ये भी अच्छा आदमी बन गया, तो फिर भगवान कृष्ण आएंगे ही नहीं। तो जितने दुनिया में दुष्ट लोग हैं उनका विनाश कौन करेगा, साधुओं की रक्षा कौन करेगा, धर्म की संस्थापना कौन करेगा, तो कुछ करना चाहिए अभी। तो फिर उन्होंने जाकर कंस को भड़काया। कंस ने कहा कि अरे कंस, तुम नहीं जानते, तुम तो बहुत भोले हो। देखो, जब आकाशवाणी हुई कि आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, आपको सोचना चाहिए कि कौन सी ओर से आठवां पुत्र, आठ, इधर से एक दो तीन से आठ, उधर से एक दो तीन से आठ, आगे से पहला या पीछे से पहला। तो कम सोचते रह गए, वो तो बराबर है, तो ये इधर से पहला वाला आठवां, उधर से पहले से आठवां, ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। तो ये असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जान से बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्हें सोचा कि ये तो अभी खतरा भूखा हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको मार डालना चाहिए। कंस का हृदय फिर से क्रूर बन गया। कंस ने फिर से देवकी और वसुदेव को बंद करा दिया और जैसे जैसे उनके पुत्र हुए, एक के बाद एक उसने छह पुत्रों की हत्या कर दी, पत्थर से मारकर, कितनी क्रूर अवस्था में। और इस समय देवकी और वसुदेव बड़े दुखी हो गए। और इसके बाद में देवकी सातवें बार गर्भवती हुई और इस बार उनके गर्भ में कोई जीव नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। कौन थे? स्वयं बलराम जी थे। और उस समय भगवान के धाम में भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे कि अब आगे क्या होना चाहिए नाटक में, ये मेरी लीला में अब आगे कौन सा घटना होनी चाहिए। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण पात्र व्यक्ति को बुलाया, जिनका नाम था योग माया। भगवान की माया शक्ति उनको बुलाया, जिनके मोह में सारी दुनिया चल रही है, और उनको बुलाकर कहा कि योग माया आपके लिए सेवा है, और आपकी सेवा ये है कि मेरे अंश बलराम या शेष वो अभी इस समय देवकी के गर्भ में हैं, जो कि मथुरा के कारागार में बंद हैं, और मैं चाहता हूं कि आप वहां जाओ, वहां से देवकी के गर्भ को अर्थात मेरे अंश शेष को आप स्थानांतरित करके वृंदावन में गोकुल में जो वसुदेव की और एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी देवी, जो कि नंद महाराज के संरक्षण में रह रही हैं, उनके गर्भ में स्थानांतरित करो। और फिर जब इस तरह से तुम कर लोगी तो मैं देवकी के गर्भ में स्वतः प्रकट हो जाऊंगा। इस समय बलराम जी मेरे आने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो अभी देवकी के गर्भ में हैं। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान के आने के पहले बलराम जी उसी गर्भ में आए थे तैयारी करने के लिए, सब ठीक ठाक करने के लिए। उन्होंने मार्ग बना दिया, फिर कृष्ण को आने के लिए उन्होंने सुविधा बना दी। तो कृष्ण भगवान ने योग माया से कहा कि मैं फिर प्रकट होऊंगा देवकी के गर्भ में, उधर बलराम मेरे बड़े भाई वो रोहिणी के गर्भ से प्रकट होंगे मेरे पहले, और तुम नंद महाराज की पत्नी यशोदा देवी के गर्भ से प्रकट होना, उनकी पुत्री बन जाना, और आगे लीला हो जाएगी। फिर वसुदेव मुझे ले जाएंगे जमुना पर और मुझे यशोदा मैया के पास में रख देंगे, और फिर तुम यहां आओगी और फिर तुम कंस के पास में रहकर कंस को तुम चेतावनी दोगी, और इसके बाद तुम प्रसिद्ध हो जाओगी सारे भौतिक जगत में अनेक नामों से, जैसे कि चंडी देवी, अंबिका, भद्रकाली, विजया, शारदा, ईशानी इत्यादि। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने योग माया को उपदेश दिया। योग माया ने तीन बार प्रदक्षिणा किया भगवान का, और फिर वहां से निकल पड़ी और सूर्य में चले गई मथुरा। मथुरा में देवकी के पास चली गई और देवकी के गर्भ से उन्होंने उस बालक को आकर्षित किया और उनका स्थानांतर करके गोकुल महावन में, जहां की रोहिणी देवी निवास कर रही थी, वहां उनके गर्भ में लगा दिया। अब रोहिणी देवी गर्भवती थी तो उनको रात को सपना आया कि अरे लगता है कि गर्भपात हो गया, और फिर स्वयं उनके सपने में उनको बताया गया, योग माया ने कहा कि चिंता नहीं करो, अब आपके गर्भ में स्वयं शेष या बलराम जी हैं, आप चिंता नहीं करो, जानबूझकर मैंने ही ये परिवर्तन किया है। और इस तरह से थोड़े समय बाद बलराम जी वहां पर वृंदावन में प्रकट हुए, थोड़े समय बाद यहां मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए। फिर वो लीला तो आप जानते हैं और जन्माष्टमी के समय पर हम सुनेंगे। तो बलराम जी जब प्रकट हुए तो वहां नंद महाराज और यशोदा देवी बड़े प्रसन्न हो गए। वैसे जब भगवान श्री कृष्ण योग माया को उपदेश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे, तो उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे अंश शेष या बलदेव बलराम वो अलग अलग नामों से जाने जाएंगे, उनका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि उनका वो देवकी के गर्भ से आकर्षित होकर उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, और दूसरी बात उनका नाम होगा राम, क्योंकि वो सबको आनंद आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाले हैं, और उनका तीसरा नाम होगा बलभद्र, जो आगे चल के बहुत वीरवान शक्तिशाली प्रभावशाली होंगे। तो वाकई बलराम जी का जन्म हुआ, और जब नामकरण हुआ, कृष्ण उस समय भी आ गए थे, कृष्ण का जन्म या कृष्ण का प्राकट्य भी हो गया था, और वसुदेव जब यहां कृष्ण को लेकर आए तो कृष्ण नंद महाराज और यशोदा मैया के हवाले रह गए। नंद महाराज थोड़े चिंतित थे, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि कंस बहुत चिंतित है, वो सब जगह ढूंढ रहा है कि कृष्ण कहाँ है, बलराम कहाँ है। तो इसलिए धूमधाम से नंद महाराज ने दोनों का नामकरण नहीं किया। बड़े एकांत स्थान में उनके कुलगुरु गर्ग ऋषि आए और उन्होंने नामकरण संस्कार किया। और बलराम जी के बारे में गर्ग ऋषि ने कहा कि इनके तीन नाम होंगे, एक तो है राम, जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था क्योंकि सबको आनंद प्रदान करेंगे, दूसरा है बल या बलदेव, क्योंकि न केवल वे भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली होंगे लेकिन आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने में पूरी तरह से समर्थ होंगे, और तीसरी बात इनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि इनकी वजह से नंद महाराज और वसुदेव इन दोनों के कुल मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये कैसे, इसके पीछे छोटा सा इतिहास है। वसुदेव क्षत्रिय थे, उनके पिता का नाम था राजा शूरसेन। जैसे उस जमाने में हुआ करता था, राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती थी, उनमें से थोड़े क्षत्रिय भी हो सकते थे और थोड़े वैश्य भी हो सकते थे। तो एक वैश्य रानी से वसुदेव का जन्म हुआ था और महाराज शूरसेन की एक वैश्य पत्नी भी थी और उनसे नंद महाराज का जन्म हुआ था। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे और नंद महाराज वो एक वैश्य का कार्य कर रहे थे, वृंदावन में रहकर अनेक गायों को चराया करते थे। भागवत में बताया जाता है कि उनके 9 लाख गाय थे। ये वैश्य का प्रमुख कार्य है, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो वृंदावन में रहकर अन्य गोपों के संग में वो गायों को चराते थे, ये उनका धन था। शास्त्र में बताया जाता है गवयो धनवान धान्य धनवान, कि जिसके पास गाय रहते हैं और जिसके पास अनाज रहता है वो धनवान है। लेकिन आजकल धनवान की कल्पना अलग हो गई है, जिसके पास हरे रंग का कागज होता है उसको धनवान माना जाता है। लेकिन आखिर में जब अकाल पड़ जाएगा, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हमारे हरे रंग के नोट किस काम के आएंगे, हम नोटों को तो खा नहीं पाएंगे। तो खैर नंद महाराज वैश्य हो गए। इस दृष्टि से उनके जो पुत्र हुए कृष्ण, वो भी वैश्य का काम करने लगे। और बलराम जी हालांकि रोहिणी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि वो नंद महाराज के हवाले थे इसलिए वो भी वैश्य का काम करने लगे। इस तरह से दोनों का संबंध जुड़ गया। तो बलराम जी पहले देवकी के घर में थे, बाद में रोहिणी के घर में, आधा समय इधर थोड़ा समय इधर, कितनी अद्भुत बात है। तो इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण, क्योंकि बलराम जी की वजह से नंद महाराज और वसुदेव इन दोनों को कुटुंबों को उन्होंने जोड़ दिया। इस तरह से बलराम जी लीला करने लगे वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ, और कितनी सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हुई। जब बलराम जी प्रकट हुए थे, देवी देवता भी वहां दर्शन करने आए थे, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे, और इस तरह से सारा ब्रह्मांड आनंद में डूब गया था सिवाय कंस के, जो कि बहुत चिंतित था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु तो सभी को होनी है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु से कभी डरते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु तो एक न एक दिन आने वाली है। तो हम कृष्ण का स्मरण करेंगे और कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो मृत्यु आज आए या कल क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान के भक्त को भगवान के धाम में ही वापस जाना है। अगर मृत्यु जल्दी भी चली आए तो मृत्यु के बाद भी भक्त भक्ति ही करने वाला है, लेकिन अभक्त जो होते हैं वो हमेशा घबरा के रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और जो बीत गया उसके बारे में शोक करते रहते हैं, हाय हाय पिछले साल क्या हुआ, ये नुकसान हुआ। तो कंस इस तरह के व्यक्ति थे, दिन रात चिंतन करते कि किस तरह से कृष्ण बलराम को ढूंढा जाए, कैसे इनको मारा जाए। उधर कृष्ण बलराम बड़े आनंद से उनकी लीलाएं कर रहे थे। बताया जाता है कि गोकुल में वृंदावन में हर रोज कम से कम एक असुर आया करता था, क्योंकि कंस ने अपने असुर साथियों को जगह जगह भेज दिया था कि जाओ ढूंढो, सारे परिसर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको ढूंढ निकालो और मार डालो, क्योंकि उनमें से कौन कृष्ण होगा बलराम होगा कौन जाने। इसलिए जाके जगह जगह उनके मित्र जो असुर थे और बड़े शक्तिशाली थे, उनके पास तरह तरह के योग शक्तियां थी, वो ऐसे जाके अत्याचार करते। तो रोज वृंदावन में भी हमेशा कोई न कोई असुर आ जाते। और बताया जाता है कि हमेशा हर रोज दोपहर के भोजन के पहले कृष्ण भगवान या बलराम भगवान कम से कम एक असुर का वध तो कर ही करते ही निश्चित, तो रोज का कार्य हो जाता उनके लिए। लेकिन इसके अलावा कृष्ण और बलराम साधारण बच्चों की तरह ही लीला करते। उनकी लीलाओं का उद्देश्य क्या था? उनकी लीलाओं का उद्देश्य था कि ऐसे सुंदर कार्य प्रकट करके इस दुनिया के लोगों को संसार के प्रति आकर्षण से छुटकारा दिलाकर उनके प्रति आकर्षण उनके हृदय में पैदा करना, जिससे कि वो भी कृष्ण भक्ति कर सकें। इसलिए आमतौर से वो साधारण ग्वाल बालों की तरह ही लीला करते रहे, साधारण बच्चों की तरह रहे वृंदावन में। केवल एकाध बार जब कोई असुर आते और असुरों को मारना पड़ता तब वो उनके अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते। एक बार ऐसे हुआ कि बलराम जी ने भी एक साधारण बच्चे की तरह लीला की। उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान मोर पंख पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं और सबको आकर्षित करते हैं, मुझे भी एक दिन के लिए कृष्ण बनना है। तो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण अब तुम आज घर में रह जाओ, मैं आज वन में जाऊंगा। उस समय बलराम और कृष्ण छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारा पीताम्बर पहनूंगा, क्योंकि बलराम जी नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और कृष्ण भगवान तो पीले रंग के पहनते हैं पीताम्बर। तो बलराम जी ने कहा आज मैं तुम्हारी धोती पहनूंगा, तुम्हारी कौस्तुभमणि और तुम्हारा मोर पंख और तुम्हारी बांसुरी लेकर मैं आज वृंदावन में जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो जब बलराम वहां गए थे तो उस समय कंस के भेजे हुए एक असुर वहां पर आया। वो कौन था? केशी, बड़े घोड़े का रूप धारण करके आया, भीषण भयानक असुर। और जैसे आवाज करते हुए आया तो भगवान जी को छोटे बालक घबरा गए, हैं भगवान लेकिन लीला कर रहे हैं, तो साधारण बच्चे जैसे घबरा जाते हैं वो भी घबरा गए। और केशी जोर से वहां आया और बड़े शक्ति से अपने पीछे के जो पांव है उनको उठाकर बलराम जी के वक्ष स्थल में जोर से लात मार दी। बेचारे बलराम जी उड़ के इधर से उधर चले गए और जब उठे तो उन्होंने देखा कि हाय हाय सब जगह घाव लग गया देखे और छाती में बहुत दर्द कर रहा है, तो बहुत दुखी हो गए, रोते रोते चले गए अपने माता के पास। जैसे छोटा बच्चा जब गिर जाता है या कुछ हो जाता है वो अपने माँ के पास रोते चले जाते हैं, वैसे बलराम रोते रोते वापस गांव में चले गए। लेकिन माँ के पास जाने के पहले कृष्ण भगवान के पास आए, बोला कृष्ण ये लो तुम्हारी बांसुरी, ये लो तुम्हारा मोरपंख, नहीं चाहिए हमको, हम बलराम ही ठीक है। एक असुर आया और हमको कृष्ण सोचकर हमारे ऊपर आक्रमण किया और इतने जोरदार लात हमको मारा कि हम इधर से उधर उड़ गए। और उनको अभी तक थोड़ा दर्द हो रहा था तो अपनी माता रोहिणी के पास गए और वहां उनके गोदी में जाकर रोते रोते सो गए। तो ऐसी मधुर लीलाएं बलराम कृष्ण करते थे। बलराम का नाम ही है बलराम और बलदेव, जो शक्ति के उद्गम है। जिस शक्ति से केशी ने उनको लात मारा वो शक्ति तो बलराम से ही आई, लेकिन फिर बलराम ने इस तरह का नाटक या इस तरह की लीला की क्योंकि वो ऐसे लीलाओं का स्वाद लेना चाहते हैं और हमको भी ये स्वाद दिलाना चाहते हैं। जब कृष्ण बलराम कुमार अवस्था में ही थे तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में वो रोज गाय के बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, ये तो रोज की बातें थी कि वो लोग जाया करते थे और जैसे ही गांव के बाहर निकलते तो कृष्ण भगवान अपने बांसुरी बजाना शुरू करते और सभी लोग बड़े आनंद से नाचते नाचते चले जाते। आपको तो पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल क्रीड़ा से बहुत आसक्त होते हैं, और आप में जो जिनके बच्चे हैं आप तो जानते हैं कि उनको खेल से रोकना, बारे में सुने हैं ना, उनको रोकना बहुत कठिन होता है क्योंकि उनका स्वभाव होता है। वो खेल कूद और रात भर जब उनको घर में रखा जाता है, स्कूल जाओ तुम, गृह पाठ करो, ये करो वो करो, उनको बहुत बड़ा बंधन लगता है। और जब खेलने का समय आता है तो इस तरह से मुक्त हो जाते हैं, बड़े आनंद से दौड़ कर खेलने के लिए जाते हैं अपने मित्रों के साथ में। तो कृष्ण बलराम और अन्य जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे, वो रात में अपने 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 माता पिता के संरक्षण में घर में रहते थे और उनके माता पिता बुलाते थे, चलो समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, चलो प्रसाद का समय, भोजन का समय हुआ, चल जल्दी आओ, स्नान करना, ये करना वो करना, जैसे अक्सर माता पिता करते हैं। तो कभी कभी उनको लगता था कि ये तो बड़ी समस्या है, हमेशा माता पिता हमको बोलते हैं ये करो वो करो, हमको बांध के रखते हैं, हमको तो खेलना है। लेकिन जब सुबह का समय आ जाता था तो उनको गाय के बछड़ों को चराने के लिए वन में जाना पड़ता था, ये उनकी सेवा थी। तो गाय को चराना बस एक बहाना था उनके लिए, उनको तो खेलना था वन में जाकर। तो ये बहाना मिला, अच्छा मौका मिला, तो सब लोग ऐसे निकल पड़ते वन के लिए कि मानो कभी एक नदी में कोई बंधारा या बांध है या उसको तोड़कर कभी नदी की पानी कैसे बह के चले जाता है, तो उसी तरह से अपने माता पिता के स्नेह के बंधन से मुक्त होकर ये हजारों की संख्या में ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन के गांव को छोड़कर वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता ये, और इतने खुश हो जाते कि आखिर हमको खेलने का समय मिला है, अभी हम निकल पड़े हैं, कि नाचते नाचते कूदते गाते अपने वाद्य बजाते बजाते वो निकल पड़ते। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते, बलराम जी उनके साथ में होते, अब तक उनका मुंडन नहीं हुआ था, चूड़ाकरण संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनके बाल भी इस तरह के लगते थे, अलग अलग विचित्र लगते थे। तो आनंद में वो चलते थे, नाचते थे, झूम के चलते थे, और वो जब ऐसे बांसुरी बजाते या नाचते तो उनके जो ग्वाल बाल मित्र होते, कभी बलराम भी, वो गाते और कृष्ण भगवान नृत्य करते, कभी कृष्ण और बलराम गाते और उनके ग्वाल बाल नृत्य करते, और चलते चलते एक दूसरे के बाल खींचते, जैसे बच्चे अब एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे का बाल खींचते और वो दूसरा बच्चा तीसरे को बोलता है तुमने मेरे बाल खींचे, तो इस तरह के साधारण बच्चों की लीला करते रहते, कभी कभी कुश्ती करते, कभी कभी एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ जाते, कभी एक दूसरे को धक्का मारते, और इस तरह से लीला करते करते झूमते नाचते कूदते आलिंगन करके एक कभी कभी घूमते, कभी कोई खेल खेलते, इस तरह से वो झूमते झूमते जाते थे। और इस समय वृंदावन के सारे निवासी स्नेह भरे आंखों से उनको देखते, और जंगल में पहुंचते ही कई सुंदर क्रीड़ाएं करते, जैसे कि कभी कोई कुंभ या बिल्वा फल को लेकर उससे फुटबॉल खेलते, या कभी एक दूसरे को वो गेंद के रूप में लेके एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, कभी कभी एक ग्वाल बाल जो है दूसरे ग्वाल बाल की आंखें बंद कर देता और बंद आंखों से उस बच्चे को बताना पड़ता कि ये किसने किसके हाथ है, और कभी कभी उनको पुरस्कार दिए जाते जीतने के लिए, पुरस्कार क्या दिया जाता, एक बांसुरी, ये ऐसे कुछ जंगल की चीजें हैं। कभी कभी एक दूसरे का पीछा करते और जो किसको पकड़ लेता तो वो जीत जाता, कभी कुश्ती करते, इस तरह से वो खेल क्रीड़ा करते करते चले जाते। कभी अगर वो अच्छा फूल देखते या अच्छा कोई धातु वगैरह देखते उसे अपने आप का श्रृंगार करते, इस तरह से हर एक ग्वाल बाल साथ में कृष्ण और बलराम दिखने में बड़े सुंदर दिखते थे। नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के धातु से अलंकृत ऐसा मनोहर दृश्य था कि स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आकर इसको देखते थे, मनोहर। और देवतागण भी अपना वेश बदलकर वहां पर आ जाते ग्वाल बाल के रूप में, और वो भी उनके बीच में रहकर खेलकूद किया करते थे। तो देखिए उनका कितना सौभाग्य था इन ग्वाल बालों का कि उनके बीच में रहकर कृष्ण और बलराम जो कि परम सत्य हैं, वो ऐसे सुंदर साधारण बच्चों की लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में इन ग्वाल बालों का गुणगान करते हैं कि इनका कितना सौभाग्य है कि स्वयं कृष्ण और बलराम जो कि भगवान है इनके संग उनको खेलने का मौका मिला है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं सताम्रं सुखानुभूत्वा दासं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विचहरो कृतपुण्यपुञ्जाः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कई ऐसे साधु वगैरह होते हैं जो कि भगवान के निराकार को पूजना चाहते हैं, निराकार में लीन होना चाहते हैं। कई ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं और भगवान को अपना प्रभु समझते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं मायाश्रितानां न दारकेण, जो माया के प्रभाव से भगवान कृष्ण को या बलराम को एक साधारण मनुष्य या बच्चा समझते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनको रहने दो अपने स्थान में, लेकिन इनकी बात तो सोचो, ये जो ग्वाल बाल हैं वो कितने भाग्यशाली थे, उन्होंने कितने जन्मों में कितने सुकृति कितने पुण्य किए होंगे, किस तरह की तपस्या भजन साधना की होगी कि वो आज स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और बलराम के संग में इतना कुछ खेलकूद कर रहे हैं। भगवान को पाना, भगवान का दर्शन करना, ये कितना कठिन है। कितने योगी तपस्वी वगैरह हजारों हजारों सालों से तपस्या करते हैं फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। परंतु इन बच्चों का सौभाग्य देखिए कि वो भगवान के साथ खेल रहे हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब देखा इन ग्वाल बालों को खेलते हुए, वो भी कहने लगे, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो कहने लगे, अहो भाग्यम कितना भाग्य है किन लोगों का, नंद गोप व्रज ओ कसाम, इस वृंदावन के निवासियों का, क्योंकि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और बलराम इनके मित्र के रूप में इनके बीच में साधारण व्यक्ति की तरह निवास कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण और बलराम लीला करते थे ग्वाल बाल के। एक दिन जबकि ग्रीष्म ऋतु था, गर्मी का मौसम, तो इसी तरह से हर दिन की तरह कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ चलते जा रहे थे वन में। अब वृंदावन की विशेषता यह है कि हर ऋतु में वहां वातावरण बहुत मधुर रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होने की बजाय वहां पर वसंत ऋतु था। वसंत ऋतु की तरह सब कुछ हरा भरा था, फूल सब जगह खिल रही थी, सब जगह 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 से झरने वगैरह दिखाई पड़ते थे, सुंदर पक्षी पशु इधर उधर दिखाई पड़ते थे, बड़ा रम्य वातावरण दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे अवस्था में जब कृष्ण बलराम हर रोज की तरह नाचते कूदते झूमते वन में जा रहे थे, तो कंस के भेजे हुए एक असुर ने वहां प्रवेश करने की इच्छा की। अब ये जो असुर थे, इनके पास कई तरह की योग सिद्धियां होती थी जिनसे वो अपने रूप को बदल सकते थे, और इस असुर का नाम था प्रलंबासुर। और उसने देखा कि एक अमुक ग्वाल बाल आज नहीं आया है, वो घर में ही रहा है, तो इस असुर ने अपना वेश बदल दिया, अपना रूप बदल के बिल्कुल उस बालक का रूप धारण कर दिया। अब श्री कृष्ण तो भगवान है, तुरंत पहचान लिए कि ये नकली ग्वाल बाल है, ये तो असुर है कंस का भेजा हुआ, लेकिन भगवान ने ये किसी को उसको मालूम होने नहीं दिया कि उनको मालूम है कि ये कौन है। और फिर जैसे रोज खेलते थे, खेल कूद चल रहा था, और फिर उन्होंने ऐसे खेल किया जिसमें से दो दल किए। भगवान कृष्ण के दल में प्रलंबासुर आ गए और उनके साथ में श्री रामा इत्यादि थे और बलराम जी के दल में वृषभ इत्यादि अन्य ग्वाल बाल थे। तो कृष्ण भगवान का दल जो है वो हार गया। तो दोनों दलों में समझौता ये था कि जो दल हार जाएगा वो ग्वाल बाल जीतने वाले दल के ग्वाल बालों को कंधे पे उठाकर वो ले जाएंगे, उनको दंड मिलेगा। तो कृष्ण भगवान का जब दल हार गया तो उस समय स्वयं कृष्ण भगवान ने भी अपने ग्वाल बाल मित्रों को उठाने के लिए उन्होंने चेष्टा की। कृष्ण भगवान ने श्रीदामा को अपने कंधों पर लिया, भद्रसेन ने वृषभ को अपने कंधों पर लिया और प्रलंबासुर ने बलराम को अपने कंधे पर लिया। सोचा कि ये बलराम है, अब मैं उसको दूर ले जाऊंगा, उसको मार डालूंगा और फिर लौट के कृष्ण को मारूंगा। ये बल प्रलंबासुर की योजना थी। तो उन्होंने बलराम जी को उठाया। बलराम जी भी स्वयं भगवान है लेकिन लीला कर रहे थे और लीला की वजह से वो जाने नहीं कि ये कौन है। और फिर चलते चलते प्रलंबासुर अन्य ग्वालों बाल बालों के संग से कहीं दूर ही चले गया। दूर 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 जाते समय तो बलराम ने देखा, अरे ये कहां जा रहा है ये। और फिर उनको पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है और उस समय इसने अपना असली रूप धारण करना प्रयत्न किया प्रलंबासुर ने। बलराम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, बढ़ाया 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 बढ़ाया, आखिर बलराम जी का वजन इतना ज्यादा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वजन रुई का दाना है उनके लिए, तो बलराम जी का असली वजन कितना होगा सोचिए। तो बलराम जी ने प्रलंबासुर के कंधों पर बैठकर इतना वजन बढ़ा दिया कि अपना जो स्वीकार किया हो रूप धारण नहीं कर पाया प्रलंबासुर और उसका भीषण राक्षस का रूप प्रकट हो गया। दिखने में भयंकर बड़ा भयानक था वो। और बलराम जी छोटे ग्वाल बाल की लीला कर रहे थे, घबरा गया, अरे ये कौन आ गया, राक्षस आ गया, असुर आ गया। लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया और फिर उन्होंने क्या किया, आसानी से उस प्रलंबासुर के सर के ऊपर एक बार मुक्का प्रहार किया बड़े जोर से अपने नाजुक कोमल कर कमलों से। ये राक्षस था बड़ा पर्वत के समान ऊंचा और ऐसे लग रहा था कि कोई चट्टान के ऊपर चांद बैठा हुआ है, क्योंकि बलराम जी चांद के समान गोरे सफेद रंग के थे। तो जैसे ही बलराम जी ने एक बार मुक्का प्रहार किया उनके सर के ऊपर, उनका सर ही फूट गया और फिर प्रलंबासुर वहां गिरकर मर गया। तो सारे ग्वाल बाल जो हैं वो दौड़कर वहां, अरे क्या हुआ क्या हुआ, देखो भगवान की कृपा है तुम बच गए बलराम, लेकिन बहुत अच्छा हुआ तुमने इसको मार डाला। तो ग्वाल बाल थोड़ी सोचते थे कि बलराम भगवान है, वो तो केवल यही सोचते थे कि ये तो हमारे मित्र हैं, कृष्ण बलराम तो हमारे यार हैं, ये भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी इनके अंदर थोड़ी शक्ति है कि वो ऐसा सब कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हरेक दिन कोई न कोई असुर की हत्या अवश्य होती और कृष्ण और बलराम इस तरह से लीला करते कि ऐसे असुरों का वध करने के बाद भी ग्वाल बालों के मन में कभी संशय उत्पन्न नहीं होता था कि क्या ये भगवान है। नहीं, वो हमेशा यही सोचते थे कि हमारे छोटे लाडले मित्र हैं ये और केवल भगवान की कृपा से ये ऐसे सब कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी बलराम जी ने क्रोध का रूप धारण किया और खास करके जब वो द्वारका में रहते थे तो उस समय उन्होंने अपना ये क्रोध का रूप कौरवों को दिखाया। इसके बारे में एक सुंदर लीला है। हुआ ये कि कृष्ण भगवान के एक पुत्र थे जिनका नाम था सांब। आप तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान की कई रानियां थी द्वारका में, कितने, उनमें से आठ प्रमुख रानियां थी। आठ प्रमुख रानियों में से एक थी जाम्बवती जो कि जाम्बवान की पुत्री थी, वही जाम्बवान जो कि त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे, उनके उपासक थे। अब वही जाम्बवान आज द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान के साथ में भी आए और उनकी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। तो श्री कृष्ण और जाम्बवती के वरिष्ठ पुत्र का नाम था सांब। सांब इसलिए नाम रखा गया था कि वो हमेशा अपने बचपन में अपने मां का साथ नहीं छोड़ता था। अम्मा मतलब मां, सह मतलब साथ में।
तो वो हमेशा माँ को छोड़ता नहीं था, जहां भी माँ जाती थी वो माँ के साथ रहता था जब वो छोटा था। तो इसलिए उनका नाम ही हो गया सह अम्बा, मतलब जो हमेशा माँ के पीछे पीछे रहता है, तो उनका नाम सांब हो गया। तो सांब जब जवान हो गए तो जैसे कि क्षत्रिय कुल में प्रथा थी उस समय, विवाह के लिए वो स्वयंवर में गए। किसके स्वयंवर में गए? हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। तो स्वयंवर में कई इधर उधर के राजकुमार आए थे, तो सांब ने सोचा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे अपहरण करके ले जाना चाहिए लक्ष्मणा को। ऐसे क्षत्रिय समाज में अक्सर हुआ करता था। स्वयं भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह इसी तरह से किया, उठा ले गए, क्योंकि रुक्मिणी देवी के जो भाई हैं रुक्मी, वो उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे। रुक्मिणी बिल्कुल इस प्रस्ताव को पसंद नहीं कर रही थी। रुक्मिणी देवी को तो केवल कृष्ण भगवान के साथ विवाह करना था। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसके लिए उपाय एक ही है, तो वो आए वहां अमरावती में और उनको उठाकर ले गए। तो सांब वहां आए, उन्होंने लक्ष्मणा को उठा दिया और रथ बिठाकर जोरदार गति से वो निकल पड़े। जब कौरवों ने देखा कि अरे ये लड़का, इसने हमारे सामने हमारी कन्या को उसके इच्छा के विरुद्ध उसको उठा के ले गया है, हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी इसका पीछा करना चाहिए और इसको अपमानित करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि जाओ सब लोग पीछा करो, लेकिन उसकी हत्या नहीं करना, क्योंकि आखिर इसने लक्ष्मणा को छुआ है, इसे लक्ष्मणा का विवाह और किसी से नहीं हो सकता, लेकिन उसको पकड़कर यहां पर ले आओ। तो फिर 6 महारथी सांब का पीछा करने लगे, उनमें से भीष्मदेव स्वयं थे, कर्ण भी थे, दुर्योधन भी थे, भूरिश्रवा भी थे, यज्ञ केतु थे, और ऐसे महारथी अपनी अपनी सेना को लेकर पीछा करने लगे। और जब सांब के पास आए तो वहां पर जोरदार युद्ध हुआ, सांब अकेले और यहां पर ये 6 महारथी। सांब भी बड़े शूरवीर थे युद्ध में, वो भी महारथी थे, तो अकेले इस तरह से युद्ध करने लगे कि ये 6 के 6 महारथी आश्चर्यचकित हो गए, खुद वो भी वाहवाह करने लगे कि वाह कैसे शूरवीरता से युद्ध कर रहा है। परंतु इतना होते हुए भी अंततः उन्होंने सांब को हरा दिया। आखिर वो लोग 6 थे और वो सब बड़े थे, अनुभवी थे, और सांब तो केवल एक तरुण थे। तो सांब को हरा दिया, सांब को बांध दिया और वापस हस्तिनापुर ले गए। अब ये खबर किसी को मिली और जल्दी से जाकर उन्होंने द्वारका में दे दी। किनको मिली? नारद मुनि को। नारद मुनि को पता चला कि सांब को गिरफ्तार कर लिया है कौरवों ने। तो नारद मुनि ने सोचा और कोई सुंदर लीला दिखनी चाहिए अभी, तो वो गए सीधे गए कहां पर? द्वारका। द्वारका में जाकर, अरे आपको मालूम है ऐसे ऐसे हुआ है, तो सबको गुस्सा आया, अरे सांब को ऐसे गिरफ्तार किया इन्होंने। तो महाराज उग्रसेन जो कि दादा थे, वो कंस के पिता थे, कृष्ण भगवान के दादा, तो उन्होंने आदेश दिया कि अभी हम कौरवों के साथ में युद्ध करेंगे, हमारे प्रति जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे। तो सारे जो यदुकुल हैं द्वारका में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उस समय बलराम जी जो हैं वो वृंदावन गए थे, वृंदावन से लौटकर अभी अभी आए थे। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, युद्ध कर रहे हो, ये ठीक नहीं, वो भी तो हमारे रिश्तेदार है ना, तो हमारे रिश्तेदारों के साथ हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो हम जाके शांति का प्रस्ताव रखते हैं उनके सामने। तो बलराम जी ने उनको शांत किया और वो अकेले चले गए। उद्धव वगैरह उनके साथ में थे, और जब हस्तिनापुर आए तो शहर में प्रवेश नहीं किया, शहर के बाहर ही रहे वो, और उनका तंबू वगैरह वहीं पर बनाया और उद्धव को अंदर भेजा कि जाओ संदेश दो कि बलराम आए हुए हैं। जब संदेश उद्धव ने दिया तो सारे कुरु लोग बड़े खुश हो गए। वो तो जानते थे कि बलराम भगवान है, और खास करके दुर्योधन जो है वो बलराम के प्रिय शिष्य थे गदा युद्ध में। तो सारे कौरव, यहां तक कि भीष्मदेव भी वहां पर आए, और आकर उन्होंने सर झुकाया, दंडवत प्रणाम किया, बलराम के लिए सुंदर भेंट उपहार इत्यादि लेकर आए, बलराम जी की स्तुति करने लगे। तो बलराम जी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो अब मेरा प्रस्ताव सामने रखना चाहिए। तो बलराम जी ने घोषणा की कि हे कुरुवंशी, आप सबने अधर्म का शरण लेकर वृषि कुल या यदुकुल के सांब को आपने गिरफ्तार कर लिया है, और महाराज उग्रसेन का आदेश है कि तुरंत शीघ्र ही आपको सांब को लौटाना चाहिए। तो जब इतने कड़क आवाज में बलराम बोले, महाराज उग्रसेन का संदेश उनको दिया, तो कौरवों को गुस्सा आया। वो कहने लगे कि देखो काल का प्रभाव कैसे है, अभी तक कलयुग शुरू नहीं हुआ लेकिन ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे कि लोग कलयुग में करने वाले हैं आगे चल के। अरे देखो तो सही, जूता मुकुट होना चाहता है। मतलब वो कहना चाहते थे कि यदुकुल के लोग जूते के स्थान में हैं और कुरुवंशी लोग वो मुकुट के स्थान में हैं। इस तरह से वो यदुकुल को बदनाम कर रहे थे और कहने लगे देखो तो सही, केवल हमारी कृपा से ये लोग अब राजा बने हैं, शादी का संबंध विवाह का संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए इनको राज सिंहासन मिला है, इनको एक राज मिला है, महल मिला है, धन मिला है, इसलिए तो इनको चामर आदि का लाभ मिल रहा है, और ये लोग आज हमसे ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे क्या ये लोग राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हैं? और बड़े गुस्से से घमंड से बात करके सारे कुरुवंशी लोग जो है अपना पीठ दिखाकर वहां से निकल पड़े। बलराम जी ने ये सारे अपमान बड़े शांति से सुने लेकिन अंदर से क्रोधित हो गए, अंततः आग बबूले हो गए। और जब सारे कुरुवंशी वहां से चले गए तो बलराम जी जोर से हंसकर बोलने लगे, ये लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, इतने घमंडी हो गए हैं कि उनको शांति पसंद नहीं है, वो अपने ही मृत्यु को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये लोग जान नहीं पा रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। वो श्री कृष्ण जिन्होंने स्वर्गलोक में जाकर इंद्र से युद्ध करके वहां का पारिजात वृक्ष ले आकर यहां द्वारका में जो लगाया है, वो कृष्ण, वो कृष्ण जिनके पारिजात वृक्ष की बात दूर है, सारा सुधर्म जो कि समग्र है स्वर्गलोक का, उसको ले आकर यहां द्वारका में स्थित किया है, जहां ऐसे हमारे देश में संसद भवन वगैरह होते हैं, जहां हमारे मंत्री लोग वगैरह बैठ के दंगा करते हैं, वहां द्वारका में सुधर्म है, सुधर्म यह सभागृह है, जहां हर रोज उग्रसेन महाराज के पीछे पीछे सारे यदुकुल के निवासी बैठते थे और वहां जाकर चर्चा करते थे, राज कारोबार की चर्चा करते थे, कौन आक्रमण कर रहा है, किसके प्रति युद्ध करना चाहिए, सेना की अवस्था कैसी है, राज्य में क्या चल रहा है, किसी को क्या शिकायत है नहीं है, तो राज्य की बातें सुधर्म सभागृह में हुआ करती थी। और ये स्वर्गलोक से आया था, उनको भेंट मिला था, क्योंकि देवतागण भी उनको मानते थे। तो बलराम कहने लगे, ये कृष्ण जिन्होंने जिनके राज्य में सुधर्म सभागृह है, वो क्या राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं है? वो कृष्ण जिनके चरण कमलों में श्री लक्ष्मी देवी स्वयं आश्रय लेना चाहती हैं, वो राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं? वो कृष्ण जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवतागण करते हैं, वो राजा बनने के लिए योग्य नहीं? लगता है कि इनके घमंड से उनका मृत्यु बहुत करीब आ चुका है। फिर जोर से भगवान बलराम हंसने लगे और उन्होंने अपना हल अपने हाथ में लिया। जैसे श्री कृष्ण के हाथों में उनकी बांसुरी रहती है, उसी तरह से बलराम के हाथ में हल रहता है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गाय चराने के लिए जो छड़ी होती है वो उनके पास होती है। तो कृष्ण भगवान गो रक्षा या गो सेवा के प्रतीक हैं और बलराम उनके हाथ में हल रहता है, तो वो कृषि के प्रतीक हैं। तो कृषि और गोरक्षा ये दो चीजें हैं तो मनुष्य आराम से रह सकता है, और उन दोनों के जो स्वामी है कृष्ण और बलराम। तो अगर हमारे पास कृष्ण बलराम है, हमारे पास खेती है और गाय है, तो किसी चीज की परवाह नहीं है। तो खैर बलराम ने अपना हल लिया और बड़े क्रोध से वो हल को जमीन में डाल दिया और कहा कि अब मैं सारे हस्तिनापुर शहर को ही जमुना में डुबा डालूंगा। और अपने हल को वहां नीचे लगाकर खींचने लगे। जैसे ही खींचने लगे, बलराम जी तो अनंत शेष के भी उद्गम है, उनके विस्तृत रूप संकर्षण सृष्टि का संहार करते हैं। सबसे पहले प्रलय करके और उसके बाद में अपने फणों से आग निकालते हैं, जिससे कि सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो उनके ही उद्गम बलराम जी को एक शहर नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे बलराम जी ने हल खींचना शुरू किया, वैसे ही हस्तिनापुर में लोगों को लगा कि कोई भीषण भूकंप हो रहा है। सब जगह घर इधर उधर गिरने लगे, बड़े बड़े महल भी इधर उधर गिरने लगे। बड़ा उत्पात हो गया, मच गया वहां पर, हंगामा मच गया सारे शहर में। और फिर कौरवों को पता चला कि अरे ये तो बलराम है, हमने बहुत बड़ी गलती की। तो जल्दी से उपहार भेंट साथ में लेकर भागते भागते बलराम जी के पास आए कि क्षमा कीजिए, हम सब बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर स्तुति अर्पण करके बलराम जी के चरणों में दंडवत अर्पण करके बलराम जी को उन्होंने शांत किया। बलराम जी शांत हुए और फिर वो जब आए थे वहां बलराम जी को शांत करने के लिए, तो सबसे पहले सांब लक्ष्मण को आगे रख के आए ताकि बलराम जी इनको देखेंगे, शांत हो जाएंगे, हस्तिनापुर को दुबा नहीं डालेंगे जमुना में। बलराम ने सांब और लक्ष्मणा को देखा, बड़े खुश हुए। वास्तव में अब तक कौरव भी सांब के ऊपर प्रसन्न हो गए थे, वो भी देखना चाहते थे कि वास्तव में क्या सांब हमारी कन्या लक्ष्मणा के लिए योग्य वर है या नहीं। लेकिन सांब ने अपने आप को योग्य व्यक्ति सिद्ध कर दिखाया था, इसलिए अब कौरव भी बड़े प्रसन्न हो गए और साथ साथ वो बलराम जी की शक्ति भी देखना चाहते थे। बलराम जी ने अपने शक्ति के एक छोटे से कण का प्रदर्शन किया और इस तरह से सांब और लक्ष्मणा को बड़े धूमधाम से बलराम जी वापस द्वारका ले गए। उनका विवाह बड़े अच्छे ढंग से हुआ और फिर ये लीला अच्छी तरह से समाप्त हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि द्वारका में बलराम जी ने इस तरह की लीलाएं भी किए, कभी क्रोध की लीलाएं, कभी मधुर लीलाएं। तो बलराम जी ये कृष्ण भाई के बड़े भाई, कृष्ण भगवान के बड़े भाई होने के नाते वो कभी कृष्ण भगवान उनसे कभी कभी घबराते भी थे। जब अर्जुन का विवाह होना था सुभद्रा से, अर्जुन आकर्षित हो गए सुभद्रा के प्रति, सन्यासी का वेश पहनकर आए, लेकिन बलराम जी की इच्छा थी कि उनके बहन सुभद्रा का विवाह किसी और से होना चाहिए, शाल्व से होना चाहिए। और इधर सुभद्रा विवाह करना चाहती हैं अर्जुन से, तो कृष्ण भगवान को उन्होंने बीच में लिया अर्जुन ने और कहा कि देखो ऐसे ऐसे है तो तुम कुछ करो। तो कृष्ण भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। तो अर्जुन ने कहा बलराम जी का क्या होगा, तो मैं संभाल लूंगा। तो फिर अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करके उनसे विवाह कर दिया। जब बलराम को पता चला बहुत गुस्सा आया, तो अर्जुन के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन ने धोखा दिया था, सन्यासी का वेश पहन के आए थे पहले और फिर सुभद्रा देवी का अपहरण करके चले गए। तो फिर उस समय कृष्ण बलराम तैयार थे, उनको मालूम था दुर्योधन बहुत गुस्से होने वाले हैं। तो बलराम जी के पैर पड़े, बड़े भैया दाऊ जी कृपया क्षमा कर दीजिए, अर्जुन भी हमारे बहन के लिए बड़ा अच्छा योग्य वर है। तो ऐसे मीठे मीठे शब्दों से उन्होंने बलराम जी को शांत कर दिया। इस तरह से कृष्ण और बलराम दोनों के बीच में द्वारका में भी इतना मीठा संबंध था। जब दुर्योधन आए द्वारका में कृष्ण और बलराम को अपने पक्ष में लेने के लिए युद्ध के समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो कृष्ण भगवान तो अर्जुन के सारथी बने और उनकी सेना तो दुर्योधन के पक्ष में गई। लेकिन बलराम जी ने कहा कि दुर्योधन मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा क्योंकि अभी कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने वाले हैं, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो ये सही है, परंतु अगर मैं तुम्हारे पक्ष में आकर अगर मैंने युद्ध किया उसका मतलब है कि मैं कृष्ण के विरुद्ध लड़ाई करूंगा, ये तो संभव नहीं है। इसलिए तुम लोग जो करना है करो, मैंने बहुत कोशिश की शांति बनाने रखने के लिए लेकिन आप दोनों मान नहीं रहे हो, मैं चला तीर्थ यात्रा में। तो बलराम जी वहां से निकल पड़े, उनको सहन नहीं हुआ कि कौरवों और पांडवों के बीच में इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, बड़ा विश्व युद्ध, और इसमें वो जानते थे कि कितने लाखों लोगों की हत्या होने वाली है, सारा वंश का नाश होने वाला है। तो इसलिए बलराम जी निकल पड़े, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और आखिर तीर्थ यात्रा में जाते जाते अंततः वो कुरुक्षेत्र में उस समय पहुंचे जबकि युद्ध का आखिरी दिन चल रहा था। 18 दिन का युद्ध चला, धुआंधार जबरदस्त युद्ध हुआ, करोड़ों 64 करोड़ लोग मारे गए 18 दिन में। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेने का यही उद्देश्य तो था कि पृथ्वी के ऊपर जो बोझ बन गया था इन पापी क्षत्रियों का, उनका बोझ कम करना। तो खैर, जब बलराम जी वहां पहुंचे तो उस समय भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध चल रहा था। कौरव के पक्ष में बड़े बड़े योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी या तो वो हार गए थे। पांडव सेना के भी कई बड़े बड़े योद्धा मर गए थे और अभी महत्वपूर्ण स्पर्धा चल रही थी भीम और दुर्योधन के बीच में। गदा युद्ध में दोनों बिल्कुल बराबर के थे, दोनों की शक्ति 10,000 हाथियों की थी और दोनों की कला गदा युद्ध में वो भी समान की थी। तो बलराम जी आए। अब बलराम जी दुर्योधन के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम रखते थे और कृष्ण भगवान भीम के प्रति। तो फिर जब कृष्ण भगवान ने देखा कि ये युद्ध अभी बराबर का है, तो कृष्ण भगवान ने अपने जंघाओं पे ऐसे हाथ करके इशारा किया भीम को। भीम को पता चल गया और भीम ने गदा घुमाया और दुर्योधन के जंघाओं पे मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वैसे गदा युद्ध में कमर के नीचे मारना नहीं चाहिए, परंतु कृष्ण भगवान के आदेश पे जो किया जाता है वो अधर्म कैसे हो सकता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की परिभाषा क्या है? जो भगवान की वाणी है वही धर्म है। अगर भगवान हमको आकर कहे कि तुम झूठ बोलो तो वो झूठ नहीं होगा, वो सच होगा। अगर भगवान हमसे आके कुछ कहे कि इसकी हत्या करो तो हमें करना चाहिए, वो धर्म है। अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमने कुछ किया तो वो पाप है। चाहे भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमने सच बोला तो वो सच बोलना पाप है, और भगवान की इच्छा अनुसार हमने झूठ बोला तो वो झूठ पाप की बात तो दूर है, वो हमारे उद्धार का कारण हो जाएगा। तो खैर, भीमसेन को ज्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण भगवान ने एक इशारा दिया, भीमसेन ने कर दिया। लेकिन दुर्योधन को की इस हालत को देखकर और भीमसेन ने इस तरह से जंघाओं पर गदा चलाया था, इसको देखकर बलराम जी बड़े नाराज हो गए और भीमसेन के प्रति इतना क्रोध रखने लगे। लेकिन उधर कृष्ण ने जब हाथ जोड़ के देखा तो बलराम ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर बलराम जी भी निराश होकर वहां से निकल पड़े। इस तरह से श्री कृष्ण और बलराम, इनका ये मीठा संबंध चाहे वृंदावन में, चाहे मथुरा में, चाहे द्वारका में, हमेशा वो दोनों साथ में रहे। मथुरा में जब वो आए 11-12 साल के वो बालक थे, उस समय भी वो साथ में सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में गए पढ़ाई करने के लिए, गुरुकुल में। वहां पर पढ़ाई करके सारे विषय में निपुण होकर वापस लौट के आए। इस तरह से आज वही बलराम जी का जन्म दिवस है, उनका प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। तो आज इस दिवस पर हम उनका स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि वो कृपा के उद्गम है, कृपा के सागर है। हमें उनकी कृपा याचना करनी चाहिए, वो आदि गुरु हैं। बलराम जी की कृपा प्राप्त करने से हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति या भक्ति हो सकती है। बलराम जी से ही हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा, जिससे कि हम माया से परे होकर हम भगवान की भक्ति मार्ग में बड़े दृढ़ता से लग सकते हैं। हम देखते हैं कि बाहर का संसार अब इतना खराब हो गया है, इतना बुरा वातावरण है सब जगह, कि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में या भक्ति में आगे बढ़ना यह प्राय असंभव हो चुका है। और आजकल ये टेलीविजन आ रहा है, सिनेमा और इतनी गंदी चीजें सब जगह लोगों को सिखाई जाती हैं। आजकल प्रथा हो गई है, जो गंदी चीजें हैं वो अच्छे मान लेते हैं लोग, और अगर कोई आदमी अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आजकल अधर्म ही धर्म बन गया है, धर्म भी अधर्म बन गया है। तो ऐसे अवस्था में अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है आगे, अगर हमें अपना मनुष्य जीवन सफल करना है, तो हमको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। नहीं तो ये माया शक्ति तो हमको आसानी से, जैसे एक तूफान एक छोटे से नाव को समुद्र के बीच में बहा के ले जाएगी, उसी तरह से माया शक्ति हमको बहा कर ले जाएगी, हम कहीं कभी नहीं रह जाएंगे। इसलिए आज के जन्म दिवस पर, बलराम जी के प्राकट्य दिवस पर, हमको बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे बलराम, आप सारे आध्यात्मिक शक्ति के उद्गम हैं। कृपया हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम संसार के बुरे आकर्षणों से प्रभावित न होकर केवल राधा कृष्ण की भक्ति में हम पूरे दृढ़ता से हम लगे रहें, अंत तक, अपने अंतिम क्षण तक। यही हमारी अभिलाषा है। ये प्रार्थना आज हमें करनी चाहिए बलराम जी के चरण कमलों में, क्योंकि जन्म दिवस के अवसर पे हर एक व्यक्ति का हृदय बड़ा उदार होता है। जन्म दिवस पे व्यक्ति दान भी देता है, बड़ा खुश रहता है, और जब आदमी खुश रहता है तो उस समय उसके पास जाना चाहिए कुछ मांगने के लिए, है ना? तो समय या भाव का बहुत महत्व रहता है, किस व्यक्ति को क्या मांगना चाहिए किस समय। तो उनके जन्म दिवस के ऊपर उनसे जाकर, जबकि वो खुश रहते हैं, जाके उनको पूछना चाहिए, बलराम जी हमारे ऊपर आप ये कृपा कीजिए, हमें भी आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान बनाइए। तो आज का ये अनुष्ठान फिर सफल हो जाएगा, अगर हमने इस तरह से बलराम जी से प्रार्थना की। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस शब्द में जो राम आता है वो बलराम को भी संबोधित करता है। इसलिए हम हरे राम कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम बलराम जी से निवेदन कर रहे हैं कि बलराम जी आपकी सेवा में हमें हमेशा रखिए। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। तो अगर आपके कोई
बलराम जी के प्रति जो स्नेह था वो भक्ति में है क्या?
हाँ, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में जो बलराम के प्रति आदर था, स्नेह था, वो क्या भक्ति नहीं है? किस लिए दुर्योधन को स्नेह था बलराम से, क्या कारण से? उनका स्वार्थ था ना, कि मुझे कुछ बलराम से मिलेगा, कृष्ण से मुझे कुछ मिलेगा। जब कृष्ण बलराम का साथ लेने के लिए वो आए थे युद्ध में, वो चाहते थे कि इन दोनों की सहायता मुझे मिल जाए तो मुझे राज्य मिल जाएगा, मेरी इंद्र तृप्ति बढ़ जाएगी, मैं बहुत भोग कर पाऊंगा। तो अंततः अगर देखा जाए तो दुर्योधन की जो भावना थी कि कृष्ण और बलराम, और खास करके बलराम, वो हमारे इंद्र तृप्ति में हमको बहुत मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की का नाम कीर्तन वगैरह करेंगे, तो हमें दुर्योधन की भावना से नहीं करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कोई भौतिक भावना नहीं रखी कृष्ण के प्रति, जब दुर्योधन ने सेना मांगी तो अर्जुन खुश हो गए, क्योंकि अर्जुन केवल कृष्ण को चाहते थे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, आपकी सेना से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो आपसे मतलब है। आप अगर मेरे साथ में रहोगे तो मुझे और किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तो अर्जुन के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए हमें अर्जुन के पदचिन्हों में चलना चाहिए और दुर्योधन के पदचिन्हों में नहीं चलना चाहिए। और कोई प्रश्न?
जो शेष है वो बलराम जी के विस्तारित स्वरूप है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो सांप जो होता है वो उसको मतलब निम्न श्रेणी का प्राणी है, वो सांप द्वेषी होता है बहुत। तो इसको इंग्लिश में मतलब सेलेस्टियल स्नेक बोलते हैं जो कृष्णा बुक में है, तो वो कैसे मतलब आध्यात्मिक कैसे है वो बलराम जी का विस्तारित स्वरूप होते हुए भी ऐसे सांप?
भगवान कृष्ण के कितने अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग योनियों में भी हैं, कि केवल मनुष्य योनि में है? अलग अलग योनियों में है। भगवान ने शुकर रूप, एक सुअर का रूप धारण किया, उनका नाम क्या था? वराह अवतार। उन्होंने एक मच्छी का रूप धारण किया, क्या नाम है उनका? मत्स्य अवतार। उन्होंने एक कछुए का रूप धारण किया, क्या नाम है उनका? कूर्म अवतार। तो ये सारे प्राणी शुद्ध माने जाते हैं या नीच श्रेणी के होते हैं? भौतिक दृष्टि से नीच माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जब ये रूप स्वीकार करते हैं तो उस रूप को नीचा नहीं समझना चाहिए। भगवान 84 लाख योनियों में, किसी भी योनियों में, योनि में प्रकट हो सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अगर भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्य हो गए। उसी तरह से भगवान ने अगर शुकर रूप धारण किया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शुकर हो गए। जो भी रूप भगवान धारण करते हैं वो भगवान ही रहते हैं, चाहे वो तथाकथित भौतिक दृष्टि से नीच योनि हो या ऊपर की योनि हो। तो सांप की योनि भौतिक दृष्टि से नीच मानी जाती है, लेकिन जब भगवान वो रूप लेते हैं तो वो नीच नहीं, वो तो पूरी तरह से आध्यात्मिक रहता है। आध्यात्मिक का संबंध योनि से नहीं है, वो भगवान से संबंधित है। भगवान का कोई भी रूप पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। तो जब हम ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं तो वो भौतिक दृष्टि है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
रूही कृष्ण मुख में बताया गया है कि भगवान जिस असुर को भी मारते हैं तो उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो महाभारत में 64 करोड़ लोग मारे गए तो उसके भी मतलब कृष्ण के द्वारा भी नहीं मारे गए या कृष्ण के हाथ से द्वारा नहीं मारे गए, उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ?
अवश्य, सब लोगों का उद्धार हो गया, क्योंकि कृष्ण के मुखारविंद को देखकर, कृष्ण को देखते हुए या उनके भक्त अर्जुन के हाथों पर जब मारे गए तो उनका उद्धार हो गया। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो मुक्ति प्राप्त करने का अच्छा तरीका भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध करो भक्त के साथ फिर हमारा भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हमें तो जैसे बतलाया गया है वैसे हमें उस पद्धति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सही है कि जिन लोगों का संहार वहां पर हुआ उन सबका उद्धार हो गया। और कोई प्रश्न पीछे?
जी, देवकी के 6 पुत्रों को शिशु अवस्था में ही इतना कठोर मृत्यु क्यों हुआ?
इसके पीछे इतिहास है। अब सुनना चाहते हैं जन्माष्टमी के समय सुनना चाहते हैं? जन्माष्टमी के समय आप आइए, जन्माष्टमी के समय चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में बताया जाए तो ये 6 पुत्र जो हैं, इसके पिछले जन्म में वो हिरण्यकश्यप के पोते थे और इसके पहले जन्म में मरीचि नाम के एक ऋषि के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया, इसलिए उनको शाप मिला कि उनको असुर योनि मिलनी है और वो काल नेमि के पुत्र के रूप में आए और काल नेमि के पुत्र और हिरण्यकश्यप के पोते। और ऐसे हुआ कि एक बार वो ब्रह्मा जी को पूजने लगे और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हम देवता यक्ष राक्षस पशु प्राणी मनुष्य इत्यादि द्वारा हम मृत्यु को पाना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हाँ कह दिया। जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मेरे शरण लेने के बजाय तुम ब्रह्मा का शरण लेने जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में अब जो तुम्हारा पिता है काल नेमि वो तुम्हारा मामा बन जाएगा और तुम भांजे हो जाओगे और वो तुम्हारी हत्या करेगा। तो इस तरह से काल नेमि की हत्या विष्णु भगवान ने की और वही काल नेमि आगे चल के कंस बना। और ये 6 पुत्र जो पहले मरीचि के पुत्र थे आगे चल के काल नेमि के पुत्र हुए, तीसरे जन्म में वो देवकी के 6 पुत्र हो गए। और जब कंस ने उनकी हत्या कर दी तो उनके पाप से उनके अपराध से वो मुक्त हो गए और फिर अपने लोक में चले गए जहां कि वो मरीचि के पुत्र के रूप में थे। तो वास्तव में देखा जाए तो कंस के माध्यम से उनका भला हो गया, उनके जितने भी पाप वगैरह थे वो धुल गए और फिर से अपने मूल स्थान में जाकर स्थित हो गए। ठीक है, सुभद्रा देवी के जन्म के बारे में बताइए, ये प्रश्न है। इधर देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र बलराम जी थे जैसे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब बलराम जी को स्थानांतरित किया योग माया देवी ने तो उस समय मथुरा में सभी लोगों ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हुआ है 7वें पुत्र का और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं 8वें पुत्र बनकर आए। तो देवकी और वसुदेव के 8 पुत्र हुए, लेकिन इसके बाद उनकी एक पुत्री भी हुई और वो थी सुभद्रा। तो सुभद्रा देवी सबसे छोटी बच्ची है वसुदेव और देवकी की, जो कि कृष्ण भगवान के बाद में जन्म लिए। इसलिए बलराम सबसे बड़े, उसके बाद में कृष्ण, फिर सुभद्रा देवी। तो ये तीन भाई बहन हुए। ठीक है। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी आरती होगी और साथ साथ कीर्तन, और इसके बाद प्रसाद होगा।